इप्सिता के पिता ने उसे समझाने का प्रयास करते हुए कहा, बेटा समझने की कोशिश करो, अभी तुम्हारा कहीं जाना ठीक नहीं है। तुम अब राजवंशी राज परिवार की बहू गनने वाली हो, इसलिए हम तुम्हें कहीं अकेले नहीं भेज सकते। इप्सिता ने ये बात सुनकर दिल टूट गया और वो हैरानी से माता पिता की ओर देखते हुए बोली, क्या कह रही हैं मम्मी आप, हमें एग्जाम की तैयारी भी तो करनी है, अगर हम अभी चले जाएं तो क्या प्रॉब्लम है। इप्सिता के पिता ने फिर समझाने की कोशिश की, बेटा समझने की कोशिश करो, अभी तुम्हारा कहीं जाना ठीक नहीं है। तुम अब राजवंशी राज परिवार की बहू बनने वाली हो, इसलिए हम तुम्हें कहीं अकेले नहीं भेज सकते। इप्सिता हैरानी से अपने पिता की ओर देखने लगी। तभी उदय, जो इतनी देर से सब कुछ सुन रहा था, बोया, मम्मी पापा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग। मैं मानता हूँ कि ऐशी अब राजवंशी राज परिवार की बहू बनने वाली है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपने एग्जाम छोड़ दे, और वैसे भी अभी शादी में काफ़ी समय है, तब तक ऐशी एग्जाम देकर वापस भी आ जाएगी, फिर आप लोग उसे जाने से क्यों मना कर रहे हैं। उदय के पिता ने उसे घूरते हुए कहा, तुम चुप रहो उदय और ऑफिस जाओ, आज की मीटिंग अटेंड करो, मुझे आने में देर हो सकती है, मुझे एक और क्लाइंट से मिलना है, इसलिए तुम अभी निकलो। उदय ने कहा, लेकिन डैड। इप्सिता की माँ ने उदय को घूरते हुए कहा, जाइए उदय, आपको हमसे बहस करने की ज़रूरत नहीं है। उदय इप्सिता की ओर देख रहा था, इप्सिता की आंखों में आंसू थे। इप्सिता ने माता पिता की ओर देखते हुए कहा, क्यों नहीं जाने दे रहे हैं आप लोग, हमें अपने एग्जाम देने हैं, आपको इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही क्या मम्मी। अब जब अभिमन्यु की माँ ने खुद शादी की तारीख आगे बढ़ा दी है तो आप इतना क्यों सोच रही हैं, और वैसे भी हम शादी के लिए मन नहीं कर रहे ना, शादी तो हम आप लोगों की मर्जी से ही कर रहे हैं, क्या आप हमें एग्जाम देने की भी इजाज़त नहीं देंगी। उदय के पिता इप्सिता की बात सुनकर कुछ नहीं बोले और उठकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने कोट का बटन लगाते हुए कहा, इप्सिता तुम एक रॉयल फैमिली से हो, ये बात मत भूलो, और छोटी छोटी बातों पर जिद करना छोड़ दो, अब तुम बच्ची नहीं हो, अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी। इप्सिता ने अपने पिता की ओर आशा भरी निगाहों से देखते हुए कहा, डैड हम अपनी सारी जिम्मेदारियां समझ रहे हैं और हम कोई जिद नहीं कर रहे, हम तो बस एग्जाम। इप्सिता अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि उसकी माँ ने उसे डांटते हुए चुप करा दिया, दैट्स इनफ इप्सिता, चुप रहिए आप, आपको अपने पापा से इस तरह बहस करने की जरूरत नहीं है। इप्सिता अपनी माँ की बात सुनकर चुप हो गई। ड्रामा जैसे खत्म करते हुए उसके पिता ने उदय की ओर देखते हुए कहा, चलिए उदय। उदय को मजबूरी में उठकर खड़ा होना पड़ा और वो अपने पिता के साथ ऑफिस के लिए निकल गया। इप्सिता अपनी माँ को मनाने की कोशिश कर रही थी, तभी इप्सिता की माँ ने तेज आवाज में कहा, बस इप्सिता आप और कुछ नहीं बोलेंगी, हम आपको साफ साफ बता रहे हैं, आप अपने एग्जाम देने नहीं जाएंगी, अब आपको बस शादी करनी है और राजवंश राज परिवार की बहू बनकर अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, सुन लिया आपने। इप्सिता ने ये शब्द सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। नंदिनी ने इप्सिता के कंधे पर हाथ रखा और उसे सांत्वना देने की कोशिश की, किंतु इप्सिता की माँ ने उसे घूरते हुए कहा, रोना धोना बंद करिए, आप छोटी बच्ची नहीं हैं जो इस तरह रोने पर हम आपकी जिद पूरी कर देंगे, इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए। इतना कहकर इप्सिता की माँ डाइनिंग टेबल से उठकर सीधे अपने कमरे में चली गई और इप्सिता वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठकर रोने लगी। इप्सिता को इस तरह रोते देखकर नंदिनी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, प्लीज शांत हो जाओ इप्सिता, तुम रोना बंद करो, तुम इस तरह रोती हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, हम कुछ ना कुछ सोचेंगे। इप्सिता ने नंदिनी का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा, क्या सोचेंगे, और सोच भी लिया तो हम सोचकर क्या कर लेंगे, मम्मी पापा ने तो साफ मना कर दिया है, अब हम एग्जाम देने ही नहीं जा सकते हैं। इप्सिता रोते हुए डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में चली गई। वो बहुत उदास और परेशान होकर चुपचाप अपने कमरे में बैठ गई। दोपहर को लंच करने के लिए भी बाहर नहीं आई। नंदिनी उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इप्सिता उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। वहीं दूसरी ओर राजमहल में अर्पिता और जयराज को जब ये पता चला कि शादी अब एक हफ्ते बाद नहीं बल्कि एक महीने बाद है, तो अर्पिता अपनी माँ से बात करने के लिए उनके कमरे में गई। उसे देखकर रानी सा ने कहा, अर्पिता अगर आप कुछ दिन और रुक जाती तो अच्छा होता, इतनी जल्दी क्या है वापस जाने की। अर्पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, मासा वैसे भी शादी में अब एक महीने का समय है तो हम यहाँ बेवजह रुककर क्या करेंगे, वैसे भी शादी से कई दिन पहले तो हमें यहाँ आना ही पड़ेगा, इसलिए हमने सोचा कि बेहतर होगा कि हम अभी घर वापस चले जाएं, और हम आपको ये बताने के लिए आए थे कि हमने तय कर लिया है कि हम शाम को ही जयराज जी के साथ चले जाएंगे। मासा ने अर्पिता को गले लगाया और उसके साथ ही सीधे अपने कमरे से बाहर निकल आई। अर्पिता जाने के लिए तैयार हो चुकी थी, तभी अभिमन्यु की कार मेन गेट से अंदर आई। उसे देखकर अर्पिता ने कहा, भाईसा की कार, भाईसा जल्दी आ गए क्या। अर्पिता की माँ ने अर्पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, जैसे ही हमने अभिमन्यु को बताया कि आप वापस अपने ससुराल जा रही हैं, वैसे ही वो अपनी मीटिंग खत्म करके तुरंत आ गए। अर्पिता ने कहा, क्या जरूरत थी भाई साहब को, भाई साहब को परेशान करने की। अर्पिता बोल ही रही थी तभी अभिमन्यु कार से बाहर उतरा और उसने अर्पिता की बात सुन ली। वो अर्पिता के सामने आकर बोला, हमारी बहन वापस जाए और हम उसे सी ऑफ करने ना आए, ऐसा हो सकता है क्या। अर्पिता अभिमन्यु को साइड हक करते हुए बोली, भाई साहब, कोई हम पहली बार अपने ससुराल नहीं जा रहे हैं। अभिमन्यु ने अर्पिता की बात बीच में ही रोकते हुए कहा, हाँ हम जानते हैं, लेकिन फिर भी अपनी बहन के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। अभिमन्यु ने अपने हाथ में पकड़े एक बॉक्स को अर्पिता के हाथ में दे दिया और रानी सा ने कार में कई गिफ्ट बॉक्स रखवाए। अर्पिता ने हाथ में पकड़े ज्वेलरी बॉक्स को खोलकर देखा तो उसमें हीरे का एक हार था। इसे देखकर अर्पिता ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, क्या भाई साहब, इसकी क्या जरूरत थी। तभी जयराज कमरे से बाहर निकल कर आया और अभिमन्यु और मासा के साथ अर्पिता को खड़ा देखकर उनके बगल में आकर खड़ा हो गया। ठीक है मासा, चलते हैं हम। अभिमन्यु ने जयराज से हैंडशेक किया। जयराज ने अभिमन्यु के कंधे को थपथपाते हुए कहा, ठीक है साले साहब, अब तो आपसे आपकी शादी में ही मुलाकात होगी। अभिमन्यु जयराज की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। अर्पिता अभी भी मासा के बगल में खड़ी थी। जयराज उसे घूरते हुए बोला, चलिए अर्पिता, वरना घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। अर्पिता ने जयराज की बात सुनकर हां में सिर हिलाया और अभिमन्यु और मासा से विदा लेने के बाद चुपचाप कार में बैठ गई। जयराज कार की डिक्की में रखे गिफ्ट बॉक्स को देखकर चुपचाप कार में बैठ गया। अर्पिता कार में बैठी, जयराज भी कार में बैठा और ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। कार में बैठते ही अर्पिता ने पीछे मुड़कर मासा और अभिमन्यु की ओर देखा, जो अभी भी उसकी कार को जाते हुए देख रहे थे। क्रमशः